आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम की हैसियत से हलफ लेंगे। नए वजीर आला कल ओडिशा में हलफ लेंगे। तालीम की मरकजी वजारत ने चार रुकनी कमेटी तश्कील दी है ताकि नेट यूजीसी इम्तिहान में 1500 से ज्यादा उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस नंबर का जायजा लिया जा सके। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने कहा है कि अगले चार दिन के दौरान मशरिकी और वस्ती भारत के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं या लू चलने का सिलसिला जारी रहेगा। और क्रिकेट में आज शाम न्यूयॉर्क में T20 आलमी कप में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। नामजद वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वुजरा की नई मरकजी कौंसिल को आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई हुकूमत की तश्कील के लिए नामजद वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मदु किया था। हलफ बर्दारी की तकरीब आज शाम 7:15 बजे मुनक़िद होगी। जुमे को जनाब मोदी ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की थी और नई हुकूमत बनाने का अपना दावा पेश किया था। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा की कयादत में एनडीए के एक वफद ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की थी और एक खत उन्हें पेश किया था जिसमें कहा गया था कि जनाब नरेंद्र मोदी को बीजेपी पार्लियामानी पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। सदर जमहूरिया को एनडीए की हलीफ पार्टियों की हिमायत के खतूत भी सौंपे गए थे। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि बहुत से पड़ोसी मुल्कों के लीडरों को भी नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी के लिए मदु किया गया है जो लगातार तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम की हैसियत से हलफ लेंगे। भारत के पड़ोसी ममालिक और बहर हिंद खित्ते के लीडर भी खसूसी मेहमान की हैसियत से तकरीब में शिरकत करेंगे। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे, मालदीव के सदर डॉ मोहम्मद मुइजू, सेशल्स के नायब सदर अहमद अफीफ और बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना के अलावा मॉरिशस के वजीर आजम प्रविंद कुमार जुगनौत, नेपाल के वजीर आजम पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के वजीर आजम शेरिंग तोबगे भी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। बांग्लादेश की वजीर आजम और सेशल्स के नायब सदर हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए पहले ही नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी मुद्दत के लिए हलफ बर्दारी की तकरीब को भारत की पड़ोसी पहले की पॉलिसी और खित्ते में सभी के लिए सलामती और तरक्की के नजरिए सागर के तनाजुर में तरजीह दी गई है। इस तकरीब में शिरकत के लिए गैर मुल्की लीडरों को मदऊ किया गया है। हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के अलावा गैर मुल्कों से आने वाले लीडर जियाफत में भी शिरकत करेंगे जिसका एहतमाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने इस तकरीब के दौरान सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की खातिर सख्त इकदाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान पैराग्लाइडर्स, पैरा मोटर्स के अलावा हैंग ग्लाइडर्स, गैर इंसानी बर्दार गाड़ी UAV और हॉट एयर बैलून समेत जैली रिवायती हवाई प्लेटफार्म की परवाज पर पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदी इस माह की 9 और 10 जून को जारी रहेगी। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट्स के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
नामजद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अपनी हलफ बर्दारी तकरीब से कबल नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। जनाब मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर भी गुलहाय अकीदत नजर किए। जनाब मोदी आज राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम की हैसियत से हलफ लेंगे। आकाशवाणी दिल्ली शाम 6:45 से राष्ट्रपति भवन से हलफ बर्दारी की तकरीब का आंखों देखा हाल नश्र करेगा। ये प्रोग्राम FM गोल्ड, इंद्रप्रस्थ, आकाशवाणी लाइव न्यूज 24x7 चैनलों पर समेत आकाशवाणी AIR और YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। ओडिशा के नए वजीर आला के नाम पर برقرار تجسس کے درمیان بی جے پی حکومت کل ہونے والی حلف برداری کی تقریب کی سبھی تیاریاں جاری ہیں۔ یہ تقریب صبح کے وقت بی جے پی کی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کے بعد اسی روز بھونیشور کے جنتا میدان میں منعقد کی جائے گی۔ اسی دوران تمام سرگرمیاں دلی منتقل ہو گئی ہیں، جہاں پارٹی کا پارلیمانی بورڈ اس پر حتمی فیصلہ کر سکتا ہے۔ بی جے پی کی 78 رکنی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ طلب کی گئی ہے تاکہ پارٹی مرکزی مشاہدین کی موجودگی میں لیڈر کا باقاعدہ انتخاب کیا جا سکے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
اڈیشا کے پہلے بی جے پی وزیر اعلی کے نام پر تجسس کے درمیان نئی دلی سے لوٹے ریاستی بی جے پی کے صدر منموہن سمر نے کہا ہے کہ فیصلہ لینے سے متعلق اعلی ترین ادارہ بی جے پی پارلیمانی بورڈ اس معاملے میں حتمی فیصلہ کرے گا۔ بی جے پی قانون ساز پارٹی کی پیر کے روز میٹنگ ہوگی، جس میں مرکزی مشاہدین کی موجودگی میں متفقہ طور پر نئے وزیر اعلی کے نام پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اس دوران 6 مرتبہ کے رکن پارلیمنٹ اور سابق مرکزی وزیر جوال اورم، سابق مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان، مغربی اڈیشا کے سینئر رہنما سریش پجاری کے نام وزیر اعلی کے عہدے کے لیے گردش کر رہے ہیں۔ ان شخصیات میں سے پجاری ہی رکن اسمبلی ہیں جنہوں نے براج راج نگر اسمبلی حلقے سے جیت حاصل کی ہے۔ وزیر اعلی کی حلف برداری کی تقریب میں نامزد وزیر اعظم نریندر مودی، بی جے پی صدر جے پی نڈا، سینئر بی جے پی رہنما امت شاہ اور این ڈی اے کی حکمرانی والی ریاستوں کے وزراء اعلی شرکت کر سکتے ہیں۔ بی جے پی نے 147 رکنی اڈیشا ریاستی اسمبلی میں 78 سیٹیں جیتی ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
مرکزی وزارت تعلیم نے انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے قومی اہلیتی امتحان نیٹ یو جی میں 1500 سے زیادہ امیدواروں کو گریس نمبرات دیے جانے کے معاملے پر غور کرنے کے لیے 4 رکنی پینل تشکیل دیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے این ٹی اے کے ڈائریکٹر جنرل سبودھ کمار سنگھ نے کہا کہ یو پی ایس سی کے سابق چیئرپرسن اس پینل کی سربراہی کریں گے۔ ڈائریکٹر جنرل نے مزید کہا کہ یہ پینل ایک ہفتے کے اندر اپنی تجاویز پیش کرے گا اور ان امیدواروں کے نتیجوں پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔
جو ایک ہم نے ویوانس ڈسل کمیٹی بنائی تھی، اس نے جو ریکمینڈیشنز دی تھی ان کو جو ہے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی انالائز کر لے۔ جو ان کے ویوانسز تھے 1600 کینڈیڈیٹس کے، ان کے بھی ویوانسز نہ رہیں، اور جو 23 لاکھ لوگوں کے من میں ہیں کہ کافی سارے ٹاپرز آ گئے تو ان کے بھی ایشو نہ ہوں، تو اس طریقے کا نرنا ایک ہم لوگوں نے دیا ہے۔ 1563 بچوں کے جو مارکس ریوائز ہو کے بھی، کئی بچوں کے مارکس جیسے نگیٹو میں تھے تو نگیٹو سے نگیٹو میں ہی رہے، اور کچھ بچوں کے ٹاپر سائڈ میں آ گئے۔ 23,33,000 بچے اپیئر ہوئے تھے، اس میں سے 13,16,000 بچے کوالیفائی کیے، ان کا پرسنٹیج 56% ہے۔ تو کہنے کا مطلب جن کو کمپنسیشن کیا گیا ہے اس سے اوور آل کوالیفائنگ کرائیٹیریا میں یا کسی میں فرق نہیں پڑا۔
میڈیکل اور ڈینٹل کورسز میں داخلوں کے نتیجوں کا 4 جون کو اعلان کیا گیا تھا، جس کے بعد سے امیدوار مختلف الزامات عائد کرتے ہوئے دوبارہ امتحانات کے انعقاد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں کئی امیدواروں نے راحت پانے کے لیے عدالت سے بھی رجوع کیا۔ نیٹ امتحان میں ریکارڈ 24 لاکھ سے زیادہ رجسٹریشن ہوئے تھے اور 97% امیدواروں نے اس میں شرکت کی تھی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج سے شمال مغربی بھارت میں پھر سے گرم ہوائیں یا لو چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ دوسری جانب اگلے 5 روز کے لیے مشرق اور مشرقی وسطی بھارت کے کچھ حصوں، اتر پردیش اور شمال مغربی مدھیہ پردیش میں گرمی کے حالات جاری رہنے کا امکان ہے۔ اسی دوران جنوب مغربی مانسون ملک میں اپنی معمول کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے آئی ایم ڈی کے سائنسداں ڈاکٹر آر کے جینمنی نے بتایا کہ جنوب مغربی مانسون جنوبی مہاراشٹر، خاص طور پر جنوبی کونکن تلنگانہ کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے اور یہ کل جنوبی چھتیس گڑھ، جنوبی اڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش کے مزید کچھ حصوں کی طرف بھی پیش قدمی کر چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگلے 2 دن کے لیے وسیع مہاراشٹر سمیت ملک کے جنوبی حصوں میں جاری بارش کے لیے اورنج اور ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کی ریاستی سرکار نے میڈیا کی جانی مانی شخصیت रामोजी राव की आखिरी रसूमात सरकारी एजाजात के साथ अदा करने का फैसला किया है, जिनका कल इंतकाल हो गया था। आखिरी रसूमात हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में आज सुबह अदा की जाएगी। आंध्र प्रदेश की सरकार ने रामोजी राव के एजाज में 9 और 10 जून को शोक का ऐलान किया है। इस दौरान रियासत की सरकारी इमारतों में कौमी परचम सरनिगू रहेगा और कोई सरकारी तकरीबात मुनाकिद नहीं होंगी। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो नायब वजीर आला की हैसियत से रियासती हुकूमत में बरकरार रहेंगे। कल मुंबई में पार्टी की मीटिंग के बाद इजहार ख्याल करते हुए जहां रियासती बीजेपी कानून साज असेंबली मेंबरों ने एक करारदाद मंजूर की थी, उन पर एतमाद जाहिर किया है और ये कहा है कि वो पार्टी की लीडर की हैसियत से काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, जिन्होंने उनसे कहा है कि वो नायब वजीर आला की हैसियत से काम करते हैं और वो ऐसा करते रहेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनके पास एक हिकमत अमली है और उन्होंने इस पर पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। मर्दों के आईसीसी टी20 आलमी कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। ये मैच न्यूयॉर्क में नसाओ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। मैच भारत में टेलीकास्ट किया जाएगा। रोहित शर्मा की कयादत में भारत ने आयरलैंड के खिलाफ 8 विकेट से शानदार जीत हासिल की थी और अपनी मुहिम का शानदार ढंग से आगाज किया था। इसके बरक्स पाकिस्तान की टीम को डलास में अमरीका के हाथों गैर मुतवक्के तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। टूर्नामेंट के ग्रुप सी के मैच में इस वक्त वेस्टइंडीज और युगांडा के दरमियान मैच जारी है। तीसरे मैच में ग्रुप बी के मैच में ओमान स्कॉटलैंड का सामना करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे एंटीगोआ के नॉर्थ साउंड में सर विवियान रिचर्ड स्टेडियम में होगा। कल रात ब्रिजटाउन बारबाडोस के कैंसिंगटन ओवल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 36 रन से हरा दिया। एक दूसरे मैच में न्यूयॉर्क में नसाओ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जुनूबी अफ्रीका ने नीदरलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। कुश्ती में कल हंगरी के बुडापेस्ट में पोलिया किमरेंड वर्गा जोनस मेमोरियल 2024 में भारत की पहलवान रितिका हुड्डा ने खवातीन के 76 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता। बुडापेस्ट कुश्ती दर्जाबंदी सीरीज में भारत के लिए यह चौथा तमगा है। अमन सहरावत ने भी मर्दों के 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल में चांदी का तमगा जीता, जबकि अंतिम पांगल और अंशु मलिक ने बिल तरतीब खवातीन के 53 किलोग्राम और 57 किलोग्राम वजन के जुमरे में चांदी के तमगे जीते। रितिका ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियन रेसलिंग ओलंपिक क्वालिफायर्स में खवातीन के 76 किलोग्राम में भारत के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक कोटे में जगह बना ली है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमायां जगह दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने नरेंद्र मोदी की वजीर आजम की हैसियत से तीसरी मुद्दत के लिए आज होने वाली हलफबरदारी से मुतालिक खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। जनाब मोदी को सदर जमहूरिया आज शाम राष्ट्रपति भवन में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगी। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की चेयरपर्सन चुने जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टी लीडर राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बनाने की करारदाद भी मंजूर कर ली है। रोजनामा इनकलाब ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के अमल की शुरुआत की खबर को नुमाया जगह दी है। अखबार के मुताबिक सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। रोजनामा प्रताप ने रामोजी फिल्म सिटी के बानी रामोजी राव के इंतकाल की खबर को अपनी क्या सुर्खी बनाया है।
आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम की हैसियत से हलफ लेंगे। नए वजीर आला कल उड़ीसा में हलफ लेंगे। तालीम की मरकजी वजारत ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, ताकि नेट यूजी इम्तिहान में 1500 से ज्यादा उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस नंबर का जायजा लिया जा सके। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने कहा है कि अगले 4 दिन के दौरान मशरकी और वस्ती भारत के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं या लू चलने का सिलसिला जारी रहेगा। और क्रिकेट में आज शाम न्यूयॉर्क में टी20 आलमी कप में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।